का किस तरह किया, श्लोक क्रमांक 5। शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक्षूद्र कोसौ गाम्यः पदाहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्। शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक्षूद्र कोसौ गाम्यः पदाहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिह्न धृक्षूद्र कोसौ गाम्यः पदाहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्। शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिह्न धृक्षुद्र कोसौ गाम्यः पदाहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक उवाच, शौनक ऋषि ने कहा, कस्य किस हेतो हो कारण से निजग्राह पर्याप्त दंड दिया कलिम कलियुग के स्वामी को दिग्विजये अपनी विश्व यात्रा के समय नृपः राजा नृदेवः राजसी व्यक्ति चिन्हधृक के समान सजा हुआ शूद्रकः शूद्रों में भी अधम असौ वह गाम गाय को यह जो पदाहनत लात से मारा तत् वह सब तत्कथ्यताम कृपा करके कहो महाभाग हे परम भाग्यशाली यदि यदि फिर भी कृष्ण कृष्ण विषयक कथाश्रयन उनकी कथाओं से संबंधित। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। कृपया इन सब घटनाओं का यदि वे कृष्ण भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो वर्णन करें। तात्पर्य शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पवित्र महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की कि कलयुग के उन्नत दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे। जो हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्रक के विषय में जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य है। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले आदि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे सब के सब श्रवणीय हैं। कृष्ण सभी मामलों के शुद्धकर्ता अवयव हैं, चाहे वे जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध करता है। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के 16वें अध्याय परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया इसे पढ़ रहे हैं। 13वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार महात्मा विदुर कई सालों के भ्रमण करने के बाद वापस हस्तिनापुर में आए केवल एकमात्र उद्देश्य से, अपने प्रिय अग्रज धृतराष्ट्र को मदद करने, उनके जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करने में। वो आए और बड़े दया से, बड़े कृपापूर्वक, बहुत ही कटु शब्द कहकर, जो तलवार के समान थे, धृतराष्ट्र के बंधन को काट दिया, भौतिक बंधन से मुक्त किए। और फिर गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर रातों रात वहां से निकल गए। तत्पश्चात 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन बहुत समय से वापस नहीं आया था द्वारका में। महाराज युधिष्ठिर सारे अपशकुन देखने लगे आकाश में, धरती पर, चारों दिशाओं में जो कुछ अमंगल सूचित कर रहे थे। और जब भीम को बता ही रहे थे तब अर्जुन का वहां आना हुआ और युधिष्ठिर अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं कि क्या परिस्थिति है द्वारका में, लोगों की क्या परिस्थिति है, भगवान श्री कृष्ण कैसे। और 15वें अध्याय में अर्जुन बतलाता है कि महाराज युधिष्ठिर के जो हृदय में शंका थी, क्या भगवान धरातल छोड़कर अपनी लीला समाप्त कर करके चले गए हैं, उस शंका को सच बताते हैं। और अर्जुन बताता है कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण जिनकी कृपा से वो सब कुछ यशस्वी प्राप्त कर पाए थे, यशस्वी हुए थे, वो अब नहीं रहे, वो धरातल छोड़कर चले गए। और ये श्रवण करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ, द्रौपदी, सुभद्रा और कुंती के साथ गृह त्याग कर देते हैं और हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। और महाराज परीक्षित को, जो उनके पौत्र हैं, उनको पूरे विश्व के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक करके चले जाते हैं। तो ये 16वां अध्याय वहां से शुरू होता है। पिछले बार हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने द्विजवर्य शिक्षया ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरह से राज्य कर रहे थे, पर एक समय उनको ये सूचना मिलती है कि कली का प्रवेश हुआ है मेरे राज्य में, और तब तलवार खींचकर सारे सैनिकों के साथ रथ पर सवार होकर जिस प्रकार समुद्र की लहरें बढ़ती जाती है, इस प्रकार वो अपने सारे सेनाओं के साथ पूरे विश्व में भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब सरस्वती के तट पर आते हैं तब वो वहां एक बहुत ही अजीब और बहुत ही भयानक दृश्य देखते हैं कि एक काला सा आदमी जो राजा का वेश धारण किया है, हाथ में तलवार लिए बैल के पैर को काट दिया है, तीन पैर को, और एक पैर पे वो बैल लड़खड़ा रहा है, और गाय पर उसने बाद प्रहार किया है। तो ये सुनते ही शौनक आदि ऋषिगण जो सूत गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं कस्य हेतो निजग्राह कलिम दिग्विजय नृप नृदेव चिन्ह दिक्षूद्र असौ गाम्य पदाहन। बोले आश्चर्य हो गया, दो चीज से वो आश्चर्यचकित हुए शौनक आदि ऋषिगण 5000 साल पहले कलियुग की शुरुआत में। एक आश्चर्य तो ये था कि ऐसा नीच व्यक्ति राजा कैसा, राजा का वेश धारण करने का साहस कैसा किया। राजा यानी क्षत्रिय, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, जो पूरे प्रजा को क्षति यानी मनुष्य जीवन व्यर्थ जाने न पाए, धर्म की रक्षा करके सारे लोगों को बचाना, भगवान का प्रतिनिधि है, धर्म संस्थापनार्थ है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, भगवान का काम, इसीलिए वो आते हैं। तीन कार्य, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का नाश, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को राजा कहता है, भगवान का प्रतिनिधि कहता है, तो उसको ये तीन चीज करना चाहिए एकदम बिना हिचकिचाहट के। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा होनी चाहिए, विनाशाय च दुष्कृताम, कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली कोई भी क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के पथ पर जा रहा है तो उसको ललकारना और उसको सजा देना, और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करना, ताकि प्रजा अपनी जीवन के, मनुष्य जीवन जिसको जिन्होंने प्राप्त किया है, परिपूर्णता को प्राप्त करें। तो बोले ऐसे राजा को उन्होंने देखा, तो राजा और नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति, नराधम, तो राजा का वेश पहनने का साहस किया था उसने, तुरंत उसे मार डालना चाहिए था, एक एक दोष। और दूसरी गलती ये, एक गाय पे लात मार रहा है वो। कल मैं ईमेल पे किसी ने मुझे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक बहुत बड़ा लेटर भेजा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ब्रिटिश से हमको फायदा भी बहुत हुआ भाई, आप सिर्फ उन्होंने राज्य किया राज्य किया, और क्यों ऐसा कहते हो, बहुत फायदा हुआ, रेलवे आया, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज आए, उन्होंने पुराने पुराने बिल्डिंग को संरक्षण करके रखा, हेरिटेज बिल्डिंग्स को बना के रखा, ये वो। कई सारे लोग स्टैटिस्टिक्स क्या है नहीं जानने के कारण ऐसा कहते हैं, और जितनी सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है अंग्रेज आने से पहले और अंग्रेज आने के बाद और अंग्रेजों के दौरान, पूरा स्टैटिस्टिक्स इसमें लिखा गया है। और उसमें से एक जो म्लेच्छ लोगों का कार्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं म्लेच्छ लोग अगर राज्य करेंगे तो गो हत्या करेंगे ही वो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी बुद्धि से इट इज ए हैम्पर, ए वो इंपेडिमेंट, इतने सारे गाय। तो वहां स्टैटिस्टिक्स बताया गया है कि 1910 के आसपास, 1910 या 1871 से 1910 के आसपास बंगाल में और आंध्र प्रदेश में गायों की संख्या लोगों की संख्या से ज्यादा थी। कहां भी देखो गाय बैल घूमते रहते थे, और इतने गोबर और गोमूत्र इत्यादि विसर्जन करते थे वो कि कोई पेस्टिसाइड क्या बोलते हैं केमिकल्स का जरूरत नहीं था, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जरूरत ही नहीं था 1800 ईस्वी के बाद पहले। और बोलिए लॉर्ड क्लाइव या कोई पता नहीं, वो उसने पूरा स्टैटिस्टिक निकाला और बोला इसको किसी तरह से मारना ही पड़ेगा सबको। और उसने पहला स्लॉटर हाउस, गो हत्या करने का जो ये है, उसने शुरू किया। और उस समय कितना, 1000 हफ्ते में 1000 ऐसा कुछ मारने का, कुछ एक शुरू किया उसने। और वहां से शुरू होकर आज लाखों की संख्या में, एक दिन में लाखों की संख्या में, खास करके बंबई में देवनार और दूसरा एक है अल कबीर हैदराबाद के पास, हैदराबाद, ये दो वहां बताया गया था, उस लेटर में बताया गया था, ये दो जो है उसमें 10,000 से ज्यादा एक क्षण के अंदर, एक समय में 10,000 गाय को मारने की क्षमता है उसके अंदर, ऐसा ये बनाया गया। तो और ये राजा के नाक के नीचे चल रहा है ये सब, और वही लोग अनुमति दे रहे। 5,000 साल पहले ये ऋषियों ने सोचा भी नहीं है, और ऑल इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको लगता है कि गायों को मार देंगे नहीं तो फालतू में घास खाती है, इतना बोझा है उनको देखभाल करना, बोझा है। और वो नहीं जानते कि सही इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, समाज की आर्थिक समृद्धि किस चीज में है। तो ये सारे भागवत में वही है, जैसा प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में समझाते हैं, भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले आदि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित हैं। युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य में बताया गया था उदनवती मुदा, ए गाय इतने प्रसन्न थे कि पूरा जो शिशिचुष्म भवान गावह पयसो धस्वती मुदा, शिशिचुष्म गावह, गाय जो थे पूरे जमीन को सींच देती थी दूध से, क्यों, पयसो उधस्वती, पयस दूध से एकदम भर देती थी, हमेशा भीगा रहता था, जैसा आज बारिश आया सब जमीन भीगा हुआ है, ऐसा दूध से हमेशा भीगा होता था। पयसो उधस्वती मुदा, क्योंकि गाय हमेशा प्रसन्न रहती थी, गाय पृथ्वी माता है, माता से, माता प्रसन्न से देगी बहुत कुछ, जब देखती है कि पुत्र पिता का सत्कार कर रहा है, पिता का आज्ञा का पालन कर रहा है। और जब माता देखती है कि ये बालक पिता का ही सारा धन लेकर पिता को नकार रहा है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो माता जो है धन को छिपा लेती है। वो कैसे देगी, वो किस हृदय से देगी, वो देना चाहती है, भर 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 के देना चाहती है, पर जब देखती है कि माता देखती है कि बच्चा जो है बाप का पैसा ले रहा है और बाप को नकार रहा है, गाली दे रहा है और उसके आज्ञा के उल्लंघन करता है, होते हुए भी वो छिपा के रखती है। इसी तरह से महाराज वीणा के समय में भी पृथ्वी ने भी सब छिपा के रखा था, फिर महाराज पृथु ने उनके कहने पर पृथ्वी ने देना शुरू किया। तो इस तरह से सारा समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र दुर्भाग्यवश भौतिक दृष्टिकोण से लोग देखने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं क्या मूल्यवान चीज है और क्या निरर्थक चीज है, समझ नहीं पाते, क्या बोझा है और क्या मूल्यवान चीज है, समझ नहीं पाते। ये ज्ञान होना जरूरी है और वो जो ज्ञान है कृष्ण संबंधित है। जब तक वो कृष्ण संबंधित ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो लोग पूछ रहे हैं हमको ये विषयों को न सुनना है ना इससे लेना देना है। पर तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कृष्ण कथाश्रयम, हमको कृष्ण कथा, हम यहां यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए हैं, 1000 साल के लिए यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यज्ञ का उद्देश्य क्या है, अगर जड़ में हम पानी डाल रहे हैं तो धड़ डाली पत्ता फूल फल सबका सिंचन हो जाएगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। तो और सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग का यज्ञ है श्रवणम कीर्तनम। तो हम यहां श्रवण कीर्तन करने के लिए 1000 साल के लिए यहां एकत्रित हुए और हरिकथा करना चाहते हैं क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है। तो आप कृपया हमें बताइए, ये जो आप विषय बता रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में और उसने कली को देखा और कली ने इस तरह से ऐसा कार्य कर रहा था, ये अगर कृष्ण से संबंधित है तो हमें बताइए, अगर नहीं तो हमें सुनना नहीं है इसको। ये एक भक्त का लक्षण है। भक्त समझता है जीवन का उद्देश्य शुद्धिकरण, आत्मशुद्धि, जीवन का उद्देश्य यही है। जब आत्मा बड़ा शुद्ध है, सच्चिदानंद है, पर जब वो भौतिक संसार में आया भगवान से विमुख होकर तो दूषित हो गया है। क्या बोलते हैं, सारे चित्त जो है अशुद्ध हो गया है, अनर्थ 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 से ढक गया है। अर्थ यानी मूल्यवान चीज, पर अनर्थ से ढक गया है। अब मनुष्य योनि का उद्देश्य है शुद्धिकरण, आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि। और ये शुद्धिकरण में एक ही शुद्ध करने का जो इंग्रेडिएंट है वो है कृष्ण। परमम पवित्रम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम। पवित्र चीजों के संपर्क में आने से अनर्थ निकल जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। तो सूर्य परम पवित्र है, सूर्य के संपर्क में अगर गंदी चीजें भी आ जाए तो धीरे धीरे उसमें से गंदगी निकालकर अशुद्ध से अशुद्ध चीज को भी अगर सूरज में, सूरज की किरणों में आप लगातार रखे तो धीरे 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 शुद्ध हो जाता है। मल विसर्जन करते हैं लोग, पर अगर सूर्य की किरणें वहां गिरी, मैं अमेरिका मॉस्को गया था, मॉस्को में वहां रेलवे सिस्टम है, वो रेलवे में अगर आप ट्रेन में जाएंगे तो टॉयलेट बंद कर देते वो लोग स्टेशन में, और स्टेशन आने के 20 मिनट पहले टॉयलेट बंद कर देते हैं और स्टेशन निकलने के बाद 20 मिनट के बाद खोलते हैं। कहीं जंगल में जब जाता है, जब गाड़ी चल रहा है, तब वो सिर्फ खोलते हैं ताकि जो मल मूत्र विसर्जन किया जाए वो स्टेशन में गंदा नहीं हो जाए। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में 24 घंटा खोला रहता है वो पूरा रेलवे ट्रैक, वो बड़ा टॉयलेट जैसा दिखता है। पर फिर भी यहां सूरज है तो सूरज होने के कारण सब जल्दी जल्दी सूख जाता है और पवित्र हो जाता है। मतलब शुद्ध हो जाता है जगह, पर वहां तो सूरज का नामो निशान नहीं है। साल में दो महीना दिखता है, जिस दिन दिखता है सब कपड़ा खोल के बियर बॉटल लेके पार्क में आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, पिकनिक आज, क्योंकि सूरज उग दिख रहा है। बहुत कम दिखता है एक या दो महीने के लिए। मेरा भारत महान। कभी कभी जब हम लोग रहते हैं समझते नहीं है इसका मूल्य, कितना सुंदर सूरज चमक रहा है, बारिश दिनों में बारिश, ये अलग अलग ऋतुओं देखने को मिलती है। वहां आठ महीना तो सिर्फ ठंडी ही ठंडी, गर्मी कह रहे थे पर कोई व्यक्ति स्वेटर नहीं निकाल पा रहा, एक दो दिन के लिए शायद स्वेटर निकालते, ऐसी ठंडी। और एक दो ही प्रकार के सब्जी, आलू गाजर और कैबेज, कैबेज को क्या कहते हैं, गोभी, गोभी गोभी फूल गोभी नहीं बंद गोभी, बस यही तीन, बारह महीना। और कुछ है ही नहीं वैरायटी का, कभी आलू लंबा काटते कभी गोल गोल काटते कभी ऐसा, यही वैरायटी। तो इतना वैरायटी, इतना सुंदर भारत में। तो इस तरह से पवित्र चीजों के संपर्क में आने से पवित्र हो जाता है। तो कृष्ण यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं, यदि कृष्ण कथोदयम, क्यों हमको महाभारत के युद्ध से दिलचस्पी है सुनने को, हम बार बार सुनना चाहते हैं महाभारत, रामायण युद्ध है, महाभारत 18 दिन का युद्ध, रामायण 12 दिन का युद्ध, ये युद्ध हुआ। वैष्णव को युद्ध अच्छा नहीं लगता है, तृणादपि सुनी चाहिए तो रोधी बस ही सुना। पर युद्ध के बारे में बहुत हमको दिलचस्पी है, जहां कृष्ण कथोदयम। आप बोलेंगे चलो हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हमको नहीं चाहिए पानीपत की लड़ाई, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, वो तो चलता ही रहता है, कोई ना कोई एक दूसरे को खाता रहता है। फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, ये संसार का निर्माण ऐसा किया गया है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो जो अशक्ति है वो उसको खाता रहता है। बस चार पैर वाले बिना पैर वाले को खाते हैं, दो पैर वाले चार पैर वाले को खाते हैं, कभी कभी आजकल दो पैर वाले दूसरे दो पैर वाले को भी खा लेते, खाने का बस, एक दूसरे को खत्म करना। मल्टीनेशनल छोटे छोटे बिजनेस को खा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज छोटे छोटे, कितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल सभी आ गए, खा गए उन लोगों को सब, छोटे छोटे अपने पैर पर खड़े थे वैश्य लोग, अपना बिजनेस कर रहे थे, खुशी थे, किसी का नौकरी करने का जरूरत नहीं था। और अब सब बोलेगा हमारा नौकरी करो नहीं तो तुम्हारा बिजनेस खत्म। ये संसार ही ऐसा है, इस संसार में मतलब एक दूसरे को खाना ही है, नहीं तो जी नहीं सकते, जीना है तो दूसरे को खाना ही है। जीवो जीवस्य जीवनम, अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। ये नियम है, नियम है संसार का, संसार की रचना ही ऐसे की गई है, क्योंकि ये जेल है। पर उसमें भी एक सज्जन जैसा जिया जा सकता है, तरीका होता है किस तरह से, तो व्यवहार कैसा किया जाए, कम से कम किसी को तकलीफ देते हुए हमारा जीवन निर्वाह करना, पर फिर भी खाना ही पड़ता है, दूसरे जीव को तो खाना ही पड़ता है, जीवो जीवस जीवन, पर कम से कम अपने भाई को मत खा जाओ, कम से कम गाय को मत खाओ, कम से कम बकरियों को मत खाओ, बाद में बोलते अंडे भी मत खाओ। बाद में बोलते भाई सब्जी उब्जी खाओ, और वो भी क्या, हमको शाकाहारी बनना नहीं है, हमको वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णटेरियंस, बस। क्योंकि भगवान कहते यज्ञ शिष्टा शन संतो मुच्चंते सर्वकिल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्मकारणा, जो अपने लिए पका के खा रहा है वो पाप खा रहा है, भले वो शुद्ध शाकाहारी खा रहा है, बिस्लरी पानी में बनाया हुआ खा रहा है, पर फिर भी वो पाप खा रहा है, क्योंकि जो भी मुंह में डालता है उसमें शक्ति आती है, और शक्ति आता है वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो जो भी कार्य करता है वो पाप कार्य कर रहा है, बस पाप में फंसते जा रहा है बस। तार मध्य जीवा कृष्ण बड़ा दयामय कोरिवारे जी सो प्रसाद अन्न दिलो भाई, जो ये नाम रत पाओ राधा कृष्ण गुण गा, उसमें जो शक्ति मिली राधा कृष्ण गुण गाओ। तो इस तरह से यदि कृष्ण कथोदयम, कृष्ण इज द प्यूरिफाइंग एलिमेंट, कृष्ण से संबंधित राजनीति, कृष्ण से संबंधित अर्थशास्त्र, कृष्ण से संबंधित किस तरह से राज्य चला देते पूरा है यहां, उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण से संबंधित अर्थशास्त्र, गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, ये अर्थशास्त्र है, गायों की रक्षा करो और ब्राह्मणों को सम्मान दो, इन चीजों को सम्मान दो, स्त्री को सम्मान, ब्राह्मणों को सम्मान, ब्राह्मणों की रक्षा, स्त्री की रक्षा, बच्चों की रक्षा, वरिष्ठ लोगों की रक्षा और गोरक्षा, तो फिर देखो कैसा समृद्धि होगा, स्वाभाविक रूप से समृद्धि होगा। पर कृष्ण भावना भावित न होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बहुत ही स्थूल रूप से आदमी देखता है, अरे ये बोझा है काट डालो इसको, उसका मूल्य हम नहीं समझ पाते। हर एक चीज भगवान की सृष्टि में, भगवान कोई मूर्ख नहीं है, सृष्टि में सोच समझ के बनाए हैं, वो नहीं जानने के कारण ये समस्या आती है, पूरा दृष्टिकोण हम नहीं देखते हैं, सिर्फ इतना ही देखते हैं, एक छोटा सा ये तकलीफ दे रहा है इसको काट डालो बस, बहुत ही मतलब पशु जो है वो भविष्य के बारे में नहीं देखता, बड़ी चीजें नहीं देखता, सामने जो दिख रहा है खा डालो बस, भूख लगा खा डालो, ये भी सोचता नहीं कि कौन है वो, मैथुन करने की इच्छा होती है, कौन है, मां है या बहन है, क्या है? कुछ नहीं, फर्क नहीं करते पशु, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब करना है कब नहीं करना है, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म से चेष्ट सा, आहार निद्रा भय मैथुन, करना ही है, बिना आहार बिना निद्रा संरक्षण करना जरूरी है अपना, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड रेस प्रिजर्वेशन इज द नेचुरल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हर एक जीव को चाहिए, पर कैसा करना है, युक्त आहार युक्त विहार युक्त कर्म से चेष्ट सा युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखः, योग योग मतलब भगवान के साथ हमको वापस जुड़ना जीवन का उद्देश्य है, और उसके लिए साधन को ठीक ठाक रखना जरूरी है, उसके लिए आहार उसके लिए विहार उसके लिए स्वप्न, न अति अष्टतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशील से, अति को त्यागना और युक्त को स्वीकार करना ये गीता का ज्ञान है, अति को त्यागना, कोई भी चीज अति त्याग दो, और गोल्डन मीन युक्त, पर लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, किस कहां किस दिशा में हम जा रहे हैं, कृष्ण कथोदयम, यदि कृष्ण कथोदयम कृष्ण से संबंधित चीजों से, नहीं तो हमको कुछ संबंध नहीं है चीजों से, समय बर्बाद है बस, निद्रे आहृते नक्तम विवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। गीता में भगवान कहते हैं एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, जो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है और जो शारीरिक स्तर पर है और जो आत्मा के स्तर पर आने की कोशिश कर रहा है, इनमें पूरा जमीन आसमान का अंतर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि तस्सा निशा पश्यतो मुने। जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए दिन है, जागने का समय है, सतर्क होने का समय है, चौकन्ना रहने का समय है, वो एक भौतिक व्यक्ति के लिए सोने का समय है, और जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का सोने का समय है, एक भौतिक व्यक्ति के लिए जागने का समय है। एक तो वेरी लिटरली अगर स्थूल रूप से भी इसको ऐसा ही लिया जाए तो भी हम देख सकते हैं वो सही है। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की प्रगति करने के लिए
जल्द से जल्द उठना चाहता है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वहां आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति करने का ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा अनुकूल वातावरण है, अनुकूल संकल्प। पर जो भौतिक व्यक्ति, उसका सोने का समय है जस्ट ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले सोने का और 11 बजे उठना और रात को 2 या 3 बजे सोना। तो एक स्तर पर दूसरे स्तर पर शारीरिक क्रियाएं, मन का मग्नता और बुद्धि की सतर्कता, ये 3 चीज से हम पहचान सकते हैं कौन व्यक्ति भौतिक है, शारीरिक स्तर पर देहात्म बुद्धि में है, और कौन आत्मा की, आत्मक साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है। दोनों बुद्धिमान हैं, बोथ आर इंटेलिजेंट, बट वन इज मटीरियली इंटेलिजेंट, अनदर वन इज स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। कोई व्यक्ति बुद्धि, मनुष्य जीवन मिला है मतलब बुद्धि है, बुद्धि है। अगर कोई बैंक को चोरी करना है तो क्या कोई कम बुद्धि वाला चाहिए? पकड़ा जाएगा वो तो। चोरी वोरी करना है तो बहुत बुद्धि चाहिए, और बैंक को लूटना है तो बहुत ही ज्यादा बुद्धि चाहिए, जीनियस होना चाहिए। दुष्कृति, कृति यानी बहुत ही महान कार्य, सुकृति और दुष्कृति। सुकृति मतलब अच्छे कार्य, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। अच्छे कार्य क्या है, उसको कैसा करना है, समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और दुष्कृति, किसी को मर्डर करना, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। कोई मूर्ख जाएगा तो पकड़ा जाएगा, उसको सब लोग मार के पीट के भगा देंगे। हर एक चीज के लिए बुद्धि चाहिए। तो दोनों बुद्धिमान हैं, पर एक की बुद्धि, अंग्रेजी में मैं उसको ट्रिपल ए फॉर्मूला कहता हूं, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रिपल एस, ऐसा ट्रिपल ए, ए ए ए। शारीरिक स्तर पर एक्टिविटी, मानसिक स्तर पर एब्जॉर्प्शन, और बुद्धि के स्तर पर अलर्टनेस। शारीरिक स्तर पर क्रियाशील होना, मानसिक स्तर पर मग्न होना, और बुद्धि के स्तर पर सतर्क होना। तो एक भौतिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, दोनों क्रियाशील हैं, कोई आलसी नहीं है, दोनों क्रियाशील हैं। पर भौतिक व्यक्ति जो शारीरिक स्तर पर है, वो भी सोता नहीं है कितना, कभी कभी सोना भी भूल जाता है, इतना वो कार्य करते हैं लोग। ये आप देखेंगे जो अभक्त लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो शारीरिक स्तर पर हैं, उनको लगता है कि और थोड़ा कार्य करूंगा, और थोड़ा कमाऊंगा, और खुशी हो जाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद मौज करूंगा, अभी गधे के समान काम करूंगा। मैंने देखा है, शायद भक्त भी इतना नहीं करते जितना तपस्या वो लोग करते। एक व्यक्ति से मिला मैं, उनकी लड़की सर्जरी में एमएस की, उसके बाद उसने फेसलिफ्ट, क्या बोलते हैं वो, फेशियल, उसका कुछ स्किन ग्राफ्टिंग के उसके ऊपर उसने एमएस किया। 17 घंटा उसको खड़ा रहना पड़ता है दिन में, 17 घंटा, और 8-8 घंटे का एक एक सर्जरी होता है। और उसके डॉक्टर ने बोला है उसमें, उसके दौरान बैठने का नहीं, एक क्षण के लिए भी बैठना नहीं, और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी थकावट दिखाना नहीं चाहिए। ये रूल है, पहला रूल है हमेशा पेशेंट के सामने, भले तुम्हारा पैर टूटा जा रहा है। हम लोगों को 16 माला करते वक्त खड़ा होने में आलसीपन, सोते रहेंगे, उठेंगे तो चल गया, बहुत चल गया, सो जाता हूं। 1.5 घंटा 2 घंटा हमको चलने के लिए, 17-17 घंटा लोग खड़े होते। एयर होस्टेस लोगों को मैंने देखा, कितना मुस्कुराते रहते, उल्टा सीधा कैसे भी आदमी हो, मुस्कुराते रहते, चलते रहते, खड़े रहते। सेल्समैन लोग चिल्लाते रहते, हम लोग पुस्तक वितरण 1 महीना के लिए थक जाते। पर वीटी में हमारे बगल में वो कपड़ा ऐसा फेंक के खड़ा होता है, ये ले 50, ले ले 50, कितना भी 50, सब 50, यू नो, टी शर्ट 50, ये भी 50, पैंट भी 50 50 50, सुबह से शाम 365 दिन चिल्लाते रहते वो लोग। क्या तपस्या करना पड़ता है उन लोगों को, एक भिखारी को भीख मांगने को 24 घंटे कितना भीख मांगना पड़ता है, तपस्या बहुत करना पड़ता है। तो क्रियाशील होना, हर एक व्यक्ति क्रियाशील है, पर किस चीज के लिए? एक देहात्म बुद्धि रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है, मूर्खतावश उसको लगता है कि वो पानी पीऊंगा तो मेरा जो प्यास है बुझ जाएगा। हर एक व्यक्ति प्यासा है, प्रेम का प्यासा, आत्मा जो है उसे प्यास है प्रेम देने की और प्रेम लेने की, अमर प्रेम और अनंत प्रेम। अमर प्रेम, ए प्रेम चलता ही रहना चाहिए, पिक्चर भी आया था ना अमर प्रेम, प्रभु जी को मालूम। और अनंत प्रेम, और उस प्रेम की प्यासा है, भूखा है वो, और भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, उसको लगता है ये और थोड़ा गधे के समान भागूंगा, ये गाजर लटक रहा है ये पकड़ लूंगा तो मिल जाएगा मुझे, कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और बाद में पीछे मुड़ के देखता है जिस व्यक्तियों के लिए मैंने पूरा जीवन दिया न वो खुश है न मैं खुश हूं, किसके लिए मैं किया ये सब, किस चीज के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, भूल जाते हूं। और भक्ति कैसा है? सुसुखम कर तो, ज्यादा तपस्या नहीं है, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा नाचो, थोड़ा जपा करो, आप प्रसाद खाओ, कार्यशील कार्यशील क्रियाशील रहो, पर किस चीज में? सोनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम, ऐसे कार्य जो भगवान को प्रसन्न, ऐसे कार्य करो जो भगवान को प्रसन्न करे, ऐसे तरह से करो जो भगवान को प्रसन्न करे, बस। नहीं धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम, श्रमयेव हि केवलम। दिन भर काम किया और रात को पता चला कि पूरा व्यर्थ था, वो जिधर गड्ढा खोदा वो सब धस गया, खत्म ही हो गया, वहां खोदना ही नहीं था, दूसरी जगह में खोद रहा था, बाद में आके किसी ने बोला एक दिन पूरा बर्बाद हो गया तो चलेगा अगला दिन है, एक हफ्ता बर्बाद हो गया तो चलेगा दूसरा हफ्ता खोद लेंगे, एक महीना चला गया चलेगा, एक साल चला गया चलेगा, पर पूरा जीवन के अंत में जब लोगों को पता लगता है कि पूरा जिंदगी भर में जो गड्ढा खोद रहा था वो गलत जगह खोद रहा था, जिंदगी भर में लाइन में खड़ा हुआ था अभी पता चला कि गलत काउंटर पे खड़ा हूं, कभी कभी ऐसा होता है सब खड़े इसीलिए मैं भी खड़ा हूं, घंटों घंटों बाद में देखा ये काउंटर नहीं बगल काउंटर, बगल काउंटर वो तो एक मील है, मैं क्या करूं पहले ही पूछ रहा था ना। तो क्रियाशील सभी रहते हैं पर किस दिशा में जा रहे हैं? यदि कृष्ण कथोदयम, क्या कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं? मन, दूसरा मन, मन का स्वभाव है मग्न हो जाना, मन चाहता है किसी चीज में मग्न होने के लिए, कोई भी व्यक्ति हर एक व्यक्ति मग्न होना चाहता है, कोई टीवी के सामने मग्न हो रहा है, कोई सड़क पे खड़े हुए सब लड़कियों को देख रहा है उसमें मग्न हो रहा है, कोई ताश खेलने में मग्न हुआ है, कोई दारू पीने में पूरा मग्न हो रहा है, दिन भर काम कर रहा है पर सामने उसके सोच रहा है कब वो कितना इतना पैसा हो जाना चाहिए ताकि वो बॉटल मिल जाएगा मुझे। हर एक व्यक्ति मग्न है, भले काम कर रहा है पर मन कहीं और है उसका, हर एक व्यक्ति का मन कहीं पूर्ण रूप से मग्न है और वही चीज उसको खींच रहा है, नहीं तो गधे के समान कौन काम करेगा। मन जो है वो था ये सब करने के बाद मग्न हो जाना उसमें, तो मन को मग्न होना, मन का स्वभाव है मग्न होना, क्योंकि मग्न नहीं होगा तो दुखालय अशाश्वतम समझ में आ जाता है दुनिया, तो हर एक व्यक्ति भूलना चाहता है, कैसे मग्न होता है दारू पी के सो जाना बस, भूलना चाहता है क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर आदमी मग्न ना हो और खुले आंख से देखे दुनिया इतना दुख है कि वो आत्महत्या कर लेगा, तो उसको भूलने के लिए कुछ ना कुछ मग्न रहना चाहिए। और एक भक्त मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वो भी मग्न है कुछ कर रहा है पर किस प्रकार से मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, किस प्रकार से ये चीज प्रसन्न करेगा, वो भी मग्न है कार्य कर रहा है। माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय लड़ो, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। आदत सा हो जाता है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, गांव में औरतें होती है दूर से एक एक दो दो सात सात किलोमीटर से वो हंडी में पानी भर के लाती है, और एक हंडी के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, और ये दोनों साइड में दूसरा, और एक बच्चे को भी साथ में, और आराम से बातचीत करते रहे, क्या हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, बातचीत चल रहा है, पर ध्यान है कि थोड़ा भी ऐसा किया तो पूरा घड़ा गया, फिर से 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। दिन भर का पानी लाती है और हमको एक घड़ा सर के ऊपर रखा तो हिल जाते हम लोग, सब भूल जाते, एक बातचीत मत करो, सीधा जाना है। पर उनको इतना आदत हो गया है, इतना आदत हो गया है कि वो सब करते रहते हैं, पर चालू होता था उनका। तो इस तरह से बाहर से कार्य है, युद्ध च, युद्ध चल रहा है, माम अनुस्मर, मालूम है ये मेन चीज है, यहां यही वहां से ले जाना है, उसके बीच में जो भी बातचीत है, पर पानी उधर से उधर जाना है। और तीसरा है बुद्धि, बुद्धि सतर्क रहना चाहिए, हमेशा चौकन्ना, कभी भूलना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं कि कौन हूं, किस लिए यहां आया हूं, क्या करने के लिए यहां आया हूं। जो भी सतर्क नहीं रहता है उसका समय चला जाता है, जो भी सतर्क नहीं रहता है वो सब कुछ खो बैठता है, जो थोड़ा ऐसा सोते रहता है, ढील ढहला रहता है, समय चला गया, उसका चीज भी चले जाते, कोई चोरी ले, चोरा लेता है वो। किस व्यक्ति का चोरी होता है जो सतर्क नहीं रहता है, ढीलापन, दरवाजा खोल के ही रखा था, ऐसे ही सो गया। कभी कभी सतर्क होकर भी लोग चोरी कर लेते, तो फिर जो सतर्क नहीं है तो क्या होगा। तो भौतिक लोग भी बहुत सतर्क हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग बिजनेस बुक पढ़िए, मैनेजमेंट बुक पढ़िए, वहां बताया जाता है कि समय को कैसा यूटिलाइज करना चाहिए, मल्टीटास्किंग बोलते हैं उसको, ये करते वक्त साथ साथ में ये भी कर लो, उसे करते वक्त ये भी कर लो, दो काम एक साथ हो जाएगा। अब ये यहां से गाड़ी ले जाना, यहां से वो करना, वो करना, वो करना, तीन चार एक साथ भी हो जाएगा, कम पेट्रोल में ज्यादा काम हो जाएगा। कितना बुद्धि लगाते वो लोग, दो पैसा बचाने के लिए इतना पूछताछ करते, किधर किधर जाना है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं, क्या किधर रखना चाहिए, कितना में कंसेशन मिलता है, कहां कहां डिस्काउंट मिलता है, दो पैसा बचाने के लिए कितना सतर्क रहते हैं वो कि कोई हमको पैसा नहीं लूटे। पैसे के मामले में, चीजों के मामले में, समय के मामले में, कम घंटे सोते हैं वो लोग, क्योंकि नहीं, दुकान खोलना है, सुबह 7 बजे खोलते हैं, रात को 10 बजे तक, फिर भी सतर्क रहते हो, तो कार्य कर रहे हैं, मग्न हैं, सतर्क हैं, पर किस चीज में सतर्क नहीं है, काल सर्प जो है उन्हें निगलता जा रहा है। एक बहुत साल पहले मैंने एक मैगजीन देखा, नेशनल ज्योग्राफिक, बहुत सुंदर पिक्चर्स आते, बेस्ट फोटोग्राफ्स, नेशनल ज्योग्राफिक बोल के एक मैगजीन आता है, उसमें मैंने एक चित्र देखा, ऐसा हरा रंग का सांप है, बड़ा सांप, अफ्रीका का कहीं वो पिक्चर है, और एक इतना बड़ा बेडुक मेंढक, और वो मेंढक ऐसा बैठा हुआ है उस तरफ देख के, और पीछे से ये सांप आया और उसको पकड़ लिया है, और आधा मेंढक का शरीर ऑलरेडी सांप के मुंह के अंदर है, उस समय एक फोटो खींचा इसने, आधा मेंढक का शरीर सांप के शरीर के, सांप के मुंह के अंदर, और आधा बाहर, और फिर भी उस मेंढक के सामने एक छोटा सा कीड़ा उड़ के जा रहा है, तो मेंढक अपना जो जिह्वा है ऐसा फेंक के उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा है। क्या फोटो लिया देखिए उसने, आधा शरीर सांप के मुंह में, आधा बाहर है, उसे ये चिंता नहीं आ रही, वो अंदर घुस रहा, बोले एक कीड़ा, कीड़ा उसको खा लो, मरने से पहले थोड़ा खा के मरेंगे, मरते मरते, खाते खाते मरेंगे, या मरते मरते खाएंगे। तो इस तरह से निद्रया हृयते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, इतना व्यस्त रहते हैं, काल जो है हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त, यानी सांप ने एक इंच निगल लिया, हमारे जीवन का एक दिन एक दिन एक दिन निगलता जा रहा है और ये लोग इकट्ठा करते जा रहे किस चीज के लिए, किसके लिए, और कब सांप हमें निगल जाएगा, कब एक ऐसा झटका मारेगा और हम लोग अंदर रहेंगे क्या मालूम। पर सतर्क नहीं है हम लोग, छोटी छोटी चीजों में सतर्क है, विषय भोग करने के लिए एक एक क्षण नहीं गंवाना चाहते हैं। मोबाइल के अंदर ये, उसके अंदर वो, उसके अंदर म्यूजिक, उसके अंदर वो, क्योंकि ट्रेन में ऐसा सड़क ऐसा सड़ रहा हूं पर उसमें भी आनंद लेना है थोड़ा, क्यों मौज ना ले, उसमें एक म्यूजिक डालकर रखूंगा वो भी सुन रहा हूं, तड़प रहे हैं पर फिर भी उसमें आनंद लेना चाहते, उसमें भी मतलब जैसा गन्ने का रस पूरा उसमें से चूस लिया है उसको फेंकते हैं, फिर उसको बाद घुमा के 8 बार घुमा के ऐसा घुसाते हैं उसके अंदर और वो दबाते हैं उसको, गन्ने का रस आपने देखा हो, एक तो ऐसा दो करते फिर घुसाते, फिर उसको 4 करते फिर घुसाते, फिर 8 करके घुसाते और 8 लोग उसके ऊपर बैठ के दबाते क्योंकि वो घूमता ही नहीं है और उसमें से 2 बूंद निकलता है, फिर उसको 8 को 16 करके फिर घुसाते, यहां तक कि पाउडर हो जाता है वो पूरा वो गन्ने का, अब पूरा पाउडर होने के बाद फेंकते हैं, फिर बकरी आती है उसमें, उसमें भी कुछ है थोड़ा, पुनः पुनः चर्वित चर्वनान। इसी तरह से 84 लाख योनियों में आहार निद्रा भय मैथु, आहार निद्रा भय मैथु, 8 करके 16 करके वही करके आए हैं, मनुष्य योनि मिली है फिर भी शायद उसमें रस होगा, अरे वो इतने इतने योनियों में नहीं मिला, अभी यहां क्या मिलेगा, नहीं मिल सकता है, एक एक क्षण में भी कितना हो सके चूसेंगे, अरे है क्या उधर चूसने के लिए। ये बुद्धि है, ये आध्यात्मिक बुद्धि है। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब क्या, सतर्क रहना, समय को जानना, समय को पहचानना। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, चाणक्य पंडित कहते हैं स्वर्ण कोटि मुद्रा भी दोगी तो एक क्षण नहीं मिलेगा आपको। महाराज खटवांग राजऋषि थे, उनको इतने महान थे वो कि देवता ने उनको बुलाया कि हमारे जो दानवों का लड़ाई है देवताओं का आप मदद करो। महाराज खटवांग मनुष्य थे, मनुष्य योनि में थे पर इतने महान राजा थे, राजऋषि इतने शक्तिशाली थे कि देवता ने उनको मदद के लिए बुलाया तो किए, लड़ाई किए, और देवताओं का मतलब बहुत लंबा काल होता है, उनका काल तो अलग होता है। सब लड़ने के बाद उन्होंने पूछा कितना समय मेरा बता, अरे हां देवता लोग इतने प्रसन्न हो गए, कुबेर सब खड़े हुए, बोले हम आपसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। पर राजऋषि होने के कारण महाराज खटवांग सतर्क थे, उन्होंने एक चीज पूछा, मेरा जीवन का कितना समय बचा है। देवताओं ने कैलकुलेट किया, कहा कि एक क्षण बचा, एक मुहूर्त बचा है बस। तुरंत महाराज खटवांग स्वर्गलोक को छोड़कर जमीन पे आए, अपने राज्य में आए और एक क्षण के अंदर सर्वस्व सब कुछ त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान में मग्न हो गए और अपना सर्वस्व को सर्वधर्मान परित्यजमामेकम पूर्ण रूप से भगवान की शरण ले ली एक क्षण में, और उसी क्षण में वो अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त किए। दिस इज कॉल्ड अलर्टनेस। बुद्धि का काम है चौकन्ना रहना, अलर्ट, वी शुड बी अलर्ट टू द टाइम। ये एबिलिटी भगवान ने हमको एबिलिटी दिया है, कुछ मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, और ये कम होते जा रहा है जैसे 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 शरीर समय जाएगा कम होते जाएगा। भगवान ने हमको कुछ फैसिलिटी दिया है, मनुष्य योनि शरीर दिया है, ये चला जाएगा तो चौकन्ना होना चाहिए। किस लिए हम मनुष्य योनि मिला है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या वही चीज जो 84 लाख योनि में कर रहे थे वही करना है कि कुछ और करना है। तो ये सतर्क है, ये लोग सतर्क है, यहां आए हैं यज्ञ करने के लिए 1000 साल के लिए, और कथा कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कथा में जब परीक्षित महाराज की आई तो बोल रहे हैं और हमको सुनना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये कथा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर अगर यह कथा कृष्ण से संबंधित नहीं है तो हमें नहीं सुनना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है। कृष्ण से संबंधित है क्या? क्योंकि जीवन का उद्देश्य है शुद्धिकरण, और कृष्ण के संबंधित जो भी चीज है वो शुद्धिकरण है, शुद्ध हो जाता है। तो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो ऐसे चीजें, ऐसा कथा कुछ नहीं हमको लेना देना, ऐसा मैगजीन, ऐसा न्यूज़पेपर, कृष्ण है क्या उसमें संबंध में कुछ है क्या? नहीं, नहीं चाहिए। बहुत अच्छा मैगजीन है, बहुत अच्छा नॉवेल है, कृष्ण के संबंधित है क्या वो? नहीं। हरि बोल। क्योंकि मनुष्य होनी बहुत समय बहुत कम है, एक एक क्षण ऐसा चला जा रहा है, देखते 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 अंकल कोई बोला है, अंकल मैं सबको अंकल बोलता था, आज मेरे को कोई अंकल बोला। पहले बार मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था 10 साल पहले, तो मैं ऐसा खड़ा था तो पीछे से एक लड़का, कॉलेज का लड़का, अंकल थोड़ा हटो ना, अंकल बोला, अंकल लगने लगा क्या? मैं तब पता चला, आईने में देखा तो थोड़ा बाल सफेद हो रहा है, अंकल हो गया भाई। अगले बार बोलेगा आजवा थोड़ा हटो। समझ जाने का, अच्छा लगता है, हमारी बच्ची का एक बच्ची हो गई, अरे तुम आजवा हो गए, सोच लो। और देखते देखते सिर्फ आपका चित्र फर्स्ट क्लास फ्रेम करके दीवार के ऊपर रहेगा, कुटे तुम चादवा, खूब चांगले मानुष होते। साल में एक बार आपको हार चढ़ाएंगे बस, अगर बड़े धार्मिक लोग हो तो, नहीं तो प्लास्टिक का हार लगा के छोड़ देंगे परमानेंटली। हर रोज कौन लगाएगा? तो कार्यशील मग्नता और सतर्कता, यहां हम देख रहे हैं ये लोग सतर्क हैं, कार्यशील हैं, कार्यरत हैं, यज्ञ कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम में लगा रहे हैं, मग्न हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण के बारे में हमको सुनाते रहिए, सुनते रहूंगा ऐसे समय जाता रहे, और सतर्क हैं। वो टॉपिक भी थोड़ा अगर प्रजल्प में जाएगा, कभी कभी हम लोग भक्तों के संग भी आता है, शुरू होता है कृष्ण कथा में और धीरे 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 कृष्ण कथा से भक्त, कृष्ण भक्त और भक्त, भक्त तो ठीक है पर उसको और क्या करता है मालूम है? मग्न हो गया, भूल गए। नहीं, हमको नहीं सुनना, ये सब मत सुनाओ। अगर कृष्ण कथोदय, कृष्ण संपर्क नहीं है, शुद्धिकरण नहीं करता है, अशुद्ध ज्यादा बजा, कचरा ज्यादा डाल रहा है, द्वेष बढ़ा रहा है, काम वासना बढ़ा रहा है, लोभ बढ़ा, नहीं चाहिए हमको। हरि बोल। भले भक्त की भी कथा हमको नहीं चाहिए, हमको संबंध नहीं, ये शुद्धिकरण है क्या, कृष्ण कथा है क्या, इंस्पायरिंग संजीवनी जैसा है, पर ऐसा कथा जिसमें कृष्ण नहीं है वो भले बाहर से रूप से कितना भी अच्छा लगे वो अमृत नहीं, वो एक्चुअली विष है, विष पी रहे हो आप, सही में एक्चुअली हम लोग विष पी रहे हैं। भक्तों के संग में भी भक्तों की निंदा करे, महाप्रभु ने अमोघ को ऐसे रख के कहा, अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, दामाद था सार्वभौम भट्टाचार्य का, सार्वभौम भट्टाचार्य कितने महान भक्त, उनका दामाद जो था हमेशा निंदा, यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जो एक बार उनको घर में बुला के खिला रहे थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि ये तो जगन्नाथ है, दिन में 56 बार खाते हैं, तो बहुत बड़ा भोग बना के सामने रखे थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य को मालूम भी था, डंडा लेके बैठे हुए थे कि अमोघ घुस जाएगा बीच में, थोड़े किचन में गए कुछ और आइटम लाने के लिए, तब तक अंदर आ गया, सन्यासी इतना खाता है, ऐसा 2 मिनट के अंदर आके इतना ईर्ष्या था उसको कि महाप्रभु, महाप्रभु बोले इतना मैं क्या खा सकता हूं, थोड़ा शाक दे दो, थोड़ा ये दे दो, मैं खाऊंगा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रेम से खिला रहे थे, उनको मालूम था कि अरे आप ले सकते हो, आप तो खाते हो जगन्नाथ के रूप में, आप तो चलते फिरते जगन्नाथ हो, खाओ इधर, हम लोग खाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब ये आ गया अमोघा, और तुरंत फिर सार्वभौम भट्टाचार्य भागे हो, भाग गया हो, और दूसरे दिन ऐसा कॉलरा बीमारी हो गया, मर रहा था वो। अब महाप्रभु आए, उनकी पत्नी कहती है सार्वभौम भट्टाचार्य, अच्छी है मेरी पत्नी, अगर मेरी बच्ची अगर विधवा भी हो जाए चलेगा, मरने दो उसे, क्यों जीवित है ये, महाप्रभु को ऐसा कह रही। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु आते हैं, और मरने वाला रहता है, और महाप्रभु अपने हाथ अमो के हृदय पे रखते हैं और बोलते हैं, अरे तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का हृदय पवित्र शुद्ध होना चाहिए, तू क्यों इतना विष रखा है अपने हृदय में? हर बार जब हम ईर्ष्या, हम किसी के बारे में कुछ निंदा कर रहे हैं तो एक्चुअली ईर्ष्या दिखा रहे हैं। ईर्ष्या सिर्फ एक ही से, भगवान से। और कोई अगर कुछ अद्भुत चीज कर रहा है, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजोंश संभव, भगवान की शक्ति के संचार के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। कोई कर रहा है अच्छे तरह से, खुश होना, आनंद हो, अच्छा है, चलो तुम कर रहे हो जो मैं नहीं कर सकता, चलो तुमसे कर रहे हो, तुमको कुछ मदद चाहिए तो करूंगा। पर जब निंदा करने लगते हैं तो भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, हर एक जीव किसी की भी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भले अभक्त भी हो उसके अंदर कुछ शक्ति है तो भगवान से ही आ रही है वो शक्ति। जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को कहा, हिरण्यकश्यप तुमको कहां से शक्ति आ रही, बोले तुमको जहां से आ रही वहीं से मेरे को भी आ रही, शक्ति तो एक ही जगह से आ रहा है तो ईर्ष्या क्यों करना? तो तुम इतने क्यों ऐसा, हर बार तुम जब निंदा करते हो तो तुम विष का पान कर रहे हो। बोले अब उस जिह्वा से जितने बार तुमने अभी विष का पान किया है, और विष जो पी लेता है उसका काउंट्रैक्ट करना है तो अमृत पीना चाहिए। तो बोले अब वही जिह्वा से दो चीज करो, कृष्ण का नाम लो, भक्तों का गुणगान करो, बस और कुछ मत करो। कृष्ण का नाम लो, अमृत है कृष्ण नामामृत, और हरिकथामृत। हरिकथामृत मतलब क्या? हरि अपने भक्तों के साथ, उनके भक्तों का गुणगान, मत भक्ता पूजा व्यधिका। तो जिस मुंह से तुमने इतने समय तक जहर पिया है उस जहर को दूर करने के लिए अब उसी जिह्वा से हरिनाम, भगवान का नाम लेते रहो सदा, कीर्तनीय सदा हरि, और भक्तों का गुणगान करो एक मधुमक्खी के समान। भले उसके अंदर हजार दुर्गुण हो, उसका एक अच्छा गुण है, उस सिर्फ उस गुण को पकड़ के गुणगान करो उसका, बस। दूसरा चीज हमको नहीं लेना देना, वो भगवान जाने, वो जाने, हमारे पास समय बहुत कम है, हम इन चीजों में पढ़कर हमारा अमूल्य समय नहीं खोना चाहते, हमको सतर्क होना चाहिए। तो ये भागवत का उद्देश्य है कि जब हम ऐसे संपर्क में आते हैं तो बार बार हमें याद दिलाना चाहिए हमारा कैसा हम कार्यरत हो रहे हैं, हमारी क्रियाएं क्या कृष्ण को प्रसन्न कर रही है। धर्म सोनुषित पुमसाम विश्वक्सेन को थासु यह न उत्पादित यदि रतिम श्रमये वही केवल। धर्म का पालन कर रहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, पर अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है और भौतिक चीजों से निरासक्त और भगवान के और उनके संबंधित चीजों से आसक्ति बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब श्रमये वही केवलम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे कहते हैं, नाव चला रहे हैं पर लंगर नहीं निकाल रहे हैं। चल रहा है, नाव चल रहा है, हाँ सोला माला हो रहा है, पर कहां महाराज, उसी की वही जगह हुआ, सामने क्यों नहीं गए? बोले लंगर नहीं हटाया, सतर्क नहीं थे, सो गए, भूल गए लंगर निकालना ही, भूल गया, गोल गोल घूम रहा है। तो इस तरह से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अनर्थ जैसे जैसे जाएंगे निष्ठा बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, प्रेम आएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदी। माफी चाहता हूं, आज थोड़ा लेट शुरू किया और थोड़ा लेट खत्म किया पर बहुत समय का कोटा था, 1.5 महीने का।